ओम 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 विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी का प्रसंग चल रहा है। पंचदशी में तत्व विवेक नामक प्रकरण के 10वां श्लोक। इत्थम सच्चित् परानंद आत्मा युक्त्या तथा विदम् परम ब्रह्म तयोश्चैक्यम् श्रुत्यन्ते शूपदिश्यते। अभानेन परम प्रेम भानेन विषये स्प्रिया अतो भान्यप्यभातासौ परमानन्दतात्मनः अध्येत्रीवर्गमध्यस्थ पुत्राध्ययनशब्दवत् भान्यप्यभानं भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते। प्रतिबन्धोऽस्ति भातीति व्यवहारार्हवस्तुनि तं निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनमुच्यते। तस्य हेतु समानाभि आरह पुत्रध्वनिश्रुतौ इहानादीरविद्यैव व्यामोहैकनिबन्धनम् चिदानन्दमयब्रह्म प्रतिबिम्बसमन्विता तमोरजः सत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा। एतैः सप्तभिः श्लोकैः प्रतिपादितम् अर्थम् संक्षिप्य दर्शयति। इससे पहले दो श्लोक मंगलाचरण के हो गए, पहला श्लोक और दूसरा श्लोक। ये मंगलाचरण के श्लोक हैं। तीसरे श्लोक से विषय वस्तु प्रतिपादन आरंभ किया गया था। तीसरे से दस तक अर्थात तीसरे से नौ तक सात श्लोक। इन सात श्लोकों के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसको यहां इत्थम ये पद द्वारा बता दिया गया। इत्थम यह है, इस तरह। इत्थम माने इस प्रकार। किस प्रकार माने संवित को, संवित माने ज्ञान। एक है उत्पत्ति विनाश रहित है, और स्वयं प्रभा है। और ये संविद ही आत्मा है। यम आत्मा आठवें श्लोक के द्वारा कहा था, यम संविद एवा आत्मा, और ये परानंद है, परमानंद का विषय है, क्योंकि परप्रेमास्पद है। इत्यादि से जो बात कही गई है उसी को यहां इत्थम ये पद से कह दिया गया। इस्थम माने इस तरह, आत्मा, आत्मा माने अपना स्वरूप, अपना स्वरूप, आत्मा माने अपना स्वरूप, मैं खुद। आपको भी ये कहना पड़ेगा कि मैं खुद, तो मुझे भी यही कहना पड़ेगा कि मैं खुद। आत्मा माने मैं खुद। सच्चित परानंद, मैं खुद सत हूं, मैं खुद चित हूं, और मैं खुद परम आनंद रूप हूं। इत्थम आत्मा, इत्थम सच्चित परानंद आत्मा, ये युक्ति से सिद्ध हो गया है। तथाविदम, अब आगे ये कहने जा रहे हैं अपने बारे में, युक्ति से जो बात सिद्ध हो गई, यही फॉर्मूला, यही प्रक्रिया परम ब्रह्म, ये परमात्मा में भी लागू हो जाएगा। तो परमात्मा में लागू होकर अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म सच्चित परानंद स्वयं प्रभा नोदेति नास्तम येति एका। परम ब्रह्म, परब्रह्म में भी ये नियम, यही फॉर्मूला लागू होगा। तब फिर दो हो गए सत, दो हो गए चित, दो हो गए आनंद, दो हो गए आत्मा, दो हो गए स्वयं प्रकाश। बोले नहीं, तयोश्चक्यम, जहां कोई विशेषता न हो तो उसको एक मानना पड़ता है, जहां कोई विशेषता हो तो उसको भिन्न मानना पड़ेगा, और कहीं विशेषता नहीं है तो वो एक ही है। आत्मा में और ब्रह्म में कोई भिन्नता सिद्ध न होने के कारण आत्मा और ब्रह्म तयोश्चक्यम, दोनों की एकता है। ये कैसे सिद्ध होगा? श्रुत्यन्ते सुपदिश्यते, दोनों की एकता श्रुति ने सिद्ध किया है। श्रुति अंत माने वेदांत, श्रुति माने वेद, श्रुति अंत माने वेदांत। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। उपदिश्यते, ये बात अपौरुषेय वेद के द्वारा, उपनिषद के द्वारा सिद्ध हो चुका है, गुरुओं ने सिद्ध किया है। ये बात ये दसवें श्लोक के द्वारा एक संक्षिप्त रूप में, सार रूप में समझा दी। तुम ऐसे हो और तुम जैसे हो ब्रह्म वैसा है, तुम और ब्रह्म में भेद नहीं है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, उपनिषद कह रही है। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे सामने। और हमारी समस्या अब यहां पूर्व पक्ष आगे रख रहा है। सिद्धांत अपनी जगह है, शास्त्र अपनी जगह जो कह रहे हैं वो ठीक है, हम शास्त्र को गलत नहीं कह रहे हैं, आचार्य जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, गुरुओं को आचार्यों को हम गलत नहीं कह रहे हैं, गुरु वेदांत वाक्यों में हमारी पूरी विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है। समस्या क्या है कि गुरु और वेदांत वाक्य जो कह रहे हैं वो अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है, समस्या ये है। अनुभव में क्या आ रहा है, गुरु और शास्त्र जो कह रहे हैं उसके ठीक विपरीत अनुभव में आ रहा है। और गुरु और शास्त्र जो कह रहे हैं वो अनुभव में नहीं आ रहा है। तो हम अनुभव में जो आ रहा है उसको सत्य माने कि गुरु शास्त्र जो कह रहे हैं उसको सत्य माने, हमारी सबसे बड़ी जटिल समस्या ये है। अब उसको यहां पूर्व पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसका समाधान विद्यारण्य मुनि जी करना चाहेंगे। पूर्व पक्ष ये प्रश्न कर रहा है, युक्ति से आत्मा के बारे में जो निश्चय हुआ, युक्ति से ब्रह्म के बारे में जो निश्चय हुआ, और श्रुति से आत्मा और ब्रह्म की एकता के बारे में जो निश्चय हुआ कि आत्मा सत है, चित है, आनंद रूप है, अद्वितीय है, स्वयं प्रवाह है, वो भान क्यों नहीं होता है, भान माने अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है। भान होता है कि नहीं, भान का अर्थ समझ रहे हैं ना, अनुभव में आ रहा है कि नहीं। आत्मा सत है, आत्मा चित है, आत्मा आनंद रूप है, परम प्रेमास्पद है, ब्रह्म सत है, ब्रह्म चित है, ब्रह्म अद्वितीय है, ब्रह्म परम प्रेमास्पद है, ब्रह्म स्वयं प्रभा है, और ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हैं। ये अनुभव में क्यों नहीं आता, आता है कि नहीं। अभाने न परम प्रेम, यहां पूर्व पक्ष सत चित ये दो पक्ष के बारे में प्रश्न नहीं उठा रहा है, तीसरा जो है परमानंद जो बात कही गई थी, आत्मा परम आनंद स्वरूप है, ये जो बात कही गई थी इसके बारे में प्रश्न उठा रहा है। आत्मा वास्तव में परम आनंद रूप है, ये जो तुम कह रहे हो या शास्त्र कह रहे हैं, युक्ति से जो सिद्ध हुआ है उसका भान होता है कि नहीं। मैं परमानंद हूं, परम आनंद रूप हूं, ये भान आपको हो रहा है कि नहीं, अभी तक तो नहीं हो रहा है। कुर्सी में बैठे बैठे सुबह से शाम तक कुछ खाने न दो, पीने न दो, कुर्सी में बैठे बैठे तुम्हें कोई पूछे केम छो तो मजा भी गया कहोगे कहोगे कोई पूछे तुमसे कि तुम केम छो तब वो मजा भी गया मजा माछिए कहोगे तो कहना चाहिए कि नहीं ये नियमानुसार तो मैं मजा में हूं। गुजराती में जिसको मजा कहते हो वही तो आनंद है, अपने आनंद में है भाई। कोई कहता है और कदाचित कुछ थोड़ी सी रस, आम रस और पूरी, आजकल उसी का मार्केट है, मेथी का गोटा, खाने दिया। उसके बाद पूछा समझो मजा आ गया भाई। तो आनंद यदि अपने में होता तो पहले भी वह शब्द प्रयोग करता, और यह सब खाने के बाद तब जाके कह रहा है कि वो मजा आ गया, बड़ा आनंद आया, क्या बढ़िया रस बनाए, क्या बढ़िया पकौड़े बनाए। तो प्रश्न ये पूछ रहे हैं, अभाने न परम प्रेम, यदि आनंद का भान नहीं होता है तो ये भान न होने वाला वस्तु आत्मा में है ये कहना बेकार है। है ही नहीं, और तुम कह जा रहे हो कि है, आत्मा में आनंद है, आत्मा में आनंद है। तो आत्मा में जो आनंद है उसका भान होता है कि नहीं? मैं हूं ये बात तो हर व्यक्ति कहेगा, अनुभव करके कह रहा है कि नहीं, मैं हूं कि नहीं उसको शंका है। इसलिए अपने सत के बारे में तो वह पक्का है, समझे कि नहीं? अपनी सत्ता के बारे में, अपने होने पने के बारे में तो उसको बिल्कुल भान हो रहा है, बिल्कुल अनुभव में आ रहा है और बिल्कुल पक्के कह रहा है मैं हूं, जरा भी शंका नहीं उसको। और तुम हो ये तुमको पता है कि नहीं? मैं हूं इसलिए अपने होने पने को मैं जानता हूं। तो अपने सत सत्ता के, अपने चित होने पना के ज्ञान का तो वो अनुभव कर ही रहा है, इसलिए उसके बारे में तो प्रश्न नहीं कर रहा है। लेकिन आत्मा के बारे में जो तीसरी बात कही दी गई है, परम आनंद, इसके बारे में प्रश्न हुआ है कि परम आनंद पना सबको अनुभव होता ही नहीं, सबको क्या, किसी को भी नहीं होता है। तो आत्मा सच्चित है ये बात तो हम मानने को तैयार हैं, परम आनंद रूप है ये मानने को हम तैयार नहीं है। यदि आत्मा परम आनंद होता, जैसे सत के बारे में शंका नहीं अपने अस्तित्व के बारे में, और अपने अस्तित्व का बोध के बारे में भी उसको कोई शंका नहीं, वो भी ज्ञात हो रहा है, अस्तित्व का ज्ञात भी हो रहा है, चित्त के बारे में भी कोई शंका नहीं, लेकिन आनंद के बारे में अनुभव क्यों नहीं होता है कि मैं आनंद रूप हूं? अभान है न परम प्रेम, आज तक भान नहीं हुआ इसलिए आत्मा परम प्रेम का विषय है ये कहना गलत है। अब कदाचित यदि तुम कहो कि नहीं नहीं आत्मा परम प्रेमास्पद है, क्योंकि पहले कहा युक्ति मानभूवम ही भूयासम, संसार में कोई भी ये नहीं कहता कि मैं न रहूं, हाँ? बना रहूं, यही अपने आनंद रूपता का लक्षण है। तो कहते हैं यदि ये भान होता है, अपने आनंद का भान होता, तब फिर ये आत्मा न विषयेस प्रिया, जिसको अपने परम आनंद का अनुभव हो रहा है वो व्यक्ति फिर संसार के क्षुद्र विषयों के प्रति स्प्रिया करेगा। बोलो, और संसार में तो 100 में 100% व्यक्ति विषय स्प्रिया में ही लगे हुए हैं। विषय की चाहना किसको नहीं है, बोलो। यदि अपने आनंद मैं आनंद रूप हूं ये भान होता तो आमरस के लिए तड़पता, मैं आनंद रूप हूं ये भान होता तो एयर कंडीशन के लिए तड़पता, मैं आनंद रूप हूं ये भान होता तो भोजन के लिए तड़पता, पानी के लिए तड़पता, संसार के क्षुद्र विषयों के लिए तड़पता, और सबके सब दुनिया में ब्रह्मा से चींटी पर्यंत सबके सब विषयों के प्रति स्पृहा करते हुए देख रहे हैं, दिख रहे हैं। मैं भी विषय की स्पृहा करता हूं, आप भी करते हो, सभी करते हैं, विषय को चाहते हैं और अपने अपने विषयों को सभी चाहते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत कौन नहीं चाहता है, बोलो। इसका मतलब है कि आत्मा आनंद रूप नहीं है, इसलिए आनंद विषयों में है, इसलिए विषय को ही चाहते हैं। विषय प्राप्त करके उनको आनंद की अनुभूति होती है, वो बार बार उस विषय को चाह रहा है, क्योंकि जब भी उसको विषय प्राप्त हुआ है आनंद की अनुभूति हुई है, और विषय को प्राप्त करते ही उससे आनंद की अनुभूति न हुई होती तो फिर दोबारे उस विषय की स्प्रिया न करता, और बार बार उसी विषय की, सुबह खाना खाई आपने तो आनंद की अनुभूति न होती तो शाम को खाना खाने के लिए आपकी प्रवृत्ति न होती, शाम को खाना खाई उससे आनंद की अनुभूति हुई तो कल सुबह फिर खाने के लिए आप प्रवृत्त होंगे, रात को जब आप सोए बिस्तर में कल जाकर तो आपको आनंद की अनुभूति न होती तो आप रात को सोने के लिए प्रवृत्ति न करते, आप प्रवृत्त न होते, क्योंकि आप सोने को गए, सोए और आनंद की अनुभूति हुई, इसलिए आप आज भी सोने के लिए जाओगे, कल भी जाओगे, क्योंकि जहां जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसी वस्तु के प्रति प्राणियों की प्रवृत्ति बार बार देखने में आ रही है, और अपने अपने आनंद की अनुभूति होती तो वो क्या सोने के लिए प्रवृत्त होता, खाने के लिए प्रवृत्त होता, आपको पैसा मिला और पैसे अपने गिने और जेब में डाले आनंद की अनुभूति हुई इसलिए फिर प्रवृत्त करते हो कि फिर पैसा मिले फिर जेब में डाले, लो जी है? आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी चढ़ी और घूमे, आनंद की अनुभूति हुई इसीलिए आप फिर दूसरी गाड़ी खरीदने की, वो बिगड़ गए तो दूसरे खरीदने की प्रवृत्त होते हो, अपने आप में आनंद होता तो आप इस तरह फिर गाड़ी खरीदने के लिए प्रवृत्त होते, बोलो। पूर्व पक्ष यहां प्रश्न कर रहा है, अभाने न परम प्रेम, आत्मा में जो आनंद रूपता है तुम कह रहे हो उसका भान नहीं होता कहते हो, तो जिसका भान नहीं होता वो चीज उसमें है, ये कहना बेकार है, समझ में आई कि नहीं। रसगुल्ले में यदि मिठास नहीं है तो रसगुल्ला मीठा है यह कहना बेकार है कि नहीं है? जो चीज जहां नहीं है उसमें वो चीज है, वो चीज है जो नहीं है वो है, कहना बेकार है। रसगुल्ला खाने पर मीठा होता है इसलिए सब कहते हैं कि रसगुल्ला मीठा है। आत्मा का आनंद के भान नहीं होता है तो फिर क्यों कह रहे हो कि आत्मा आनंद रूप है? अब तुम कहते हो कि नहीं भान होता है, सबको होता है, तो फिर सभी लोग विषय की स्प्रिया क्यों करते हैं? और सर्वत्र विषय स्प्रिया दिख रहा है, इससे यही निष्कर्ष होता है कि आत्मा आनंद रूप तो नहीं है। बस आनंद तो विषय में ही है, क्योंकि यदि विषय में आनंद न होता तो चींटी से ब्रह्मा पर्यंत विषय में क्यों प्रवृत्त होते? अवाने न परम प्रेम भाने न विषय प्रिया, अन्वय व्यतिरिक्त। ये प्रश्न का उत्तर यह है, अतो भान्यप्यभाता सौ परमानंदतात्मनः। आत्मा परमानंद रूप है इसमें तो शंका ही नहीं। प्रश्न यह है कि उसका भान सबको क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है, भान होता भी है, भान नहीं भी होता है। भाने अपि अभाता, भाने अपि अभाता, भान होने पर भी भान नहीं होता। अब ये क्या बात है भाई, भान होता भी है और भान नहीं भी होता है, ये क्या है? भान होता है तो भान होता है कहो, भान नहीं होता है तो भान नहीं होता है कहो। भान होता भी है कह रहे हो और भान नहीं होता है भी कह रहे हो, ये बात समझ में नहीं आई। असौ आत्मनः परमानंदता, इस आत्मा में रहने वाले जो परम आनंद रूपता है उसका भान होता भी है भान नहीं भी होता है, दोनों ही है। ये समझ में नहीं आया भाई। बोले ऐसा होता है व्यवहार में भाई, तो मैं उदाहरण देकर समझाऊं? बोले हाँ, तो अब एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं, सिद्धांती हैं। भान होना और न होना है, दोनों एक साथ होता है, ये बात एक दृष्टांत से समझा रहे हैं। ये दृष्टांत आप लोगों को समझ में आए चाहे ना आए, ये पुरानी दृष्टांत है। अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत भानेप्यभानं भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। यही है मर्म, यही पर है दृष्टांत, आप समझ लो। ये कोई वैदिक सनातन धर्म और वेद और वैद संस्कृति पर पूरा विश्वास रखने वाला व्यक्ति, आप और हम नहीं, कोई आप और हम ऐसा होते करते तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती न करते, है ना? तो आप और हमने क्या किया है, अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती की, कहां भर्ती की? ईसुकूल में, जहां ईसा मसीह के सिद्धांत पढ़ाया जाता हो उसको क्या बोलते हैं, ईसुकूल है? हाँ, वही है, सच बात कह रहा हूं मैं। ईसा मसीह कैसे पैदा हुए, प्रभु ईसा मसीह, प्रभु यीशु कैसे पैदा हुए, प्रभु यीशु ने क्या किया, यही तो पढ़ाए जाते हैं। प्रभु यीशु परमात्मा है, लेव जी प्रभु हैं, ऐसे पैदा हुए, ऐसा किया, वैसा किया, उनकी स्टोरी पढ़ाई जाती है। है। भगवान शिव की बात कहीं कोई नहीं कहते, राम की बात कोई नहीं कहते हैं, इसीलिए तो एक मंत्री ने, मंत्री है कि कोई सांसद है बीजेपी का, रामजादाओं के औलाद और हरामजादाओं के औलाद कह दिया तो बवाल हो गया वह, है ना? बवाल हो गया इंडिया में। साथ भी कोई थी है, रामजादा और हरामजादा। तो हमारी परंपरा तो क्या है, गुरुकुल में भर्ती करते हैं ना हम बच्चे, यीशु को कुल में नहीं, गुरुकुल में भर्ती करते हैं। अब गुरुकुल में तो सबसे पहले वेद पढ़ना पड़ता है, इके तुर जे त्वा आदि है। तो कोई व्यक्ति था, उसने निश्चय किया कि अपने बच्चों को, मैं बेटे को गुरुकुल में ही पढ़ाऊंगा, तो ले जाकर गुरुकुल में भर्ती कर दिया। अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनीत तम अध्यापयित, ब्राह्मण के बच्चों को 8 वर्ष के होते ही जनेऊ करो, यज्ञ पवित्र संस्कार करके उसको तुरंत वेद आरंभ करो। उन्होंने वही किया और उस गुरुकुल की परंपरा थी कि उसको भर्ती कर दिया और गुरुकुल में छोड़ दिया, बाप गया अपने घर। तो बहुत दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद, बाप को यह लगा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, पता लगाऊं। वो एक दिन गुरुकुल पहुंच गया। अब सुबह गुरुजी बच्चों को, सभी बच्चों को रख के वेद पढ़ा रहे थे, तो चौकीदार ने रोक दिया, उसको अंदर जाने से रोक दिया, तुम इस समय अंदर नहीं जा सकते हो। बोले मैं जानना चाहता हूं कि मेरा बेटा वेद पढ़ रहा है कि नहीं, अध्ययन कर रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं। बोले सभी पढ़ रहे हैं, तुम आवाज आ रहा है, सुन रहे हो ना, वो जोर जोर से बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, तुमको अपने बेटे की आवाज पहचानते हो कि नहीं, तुम अपने बेटे की आवाज पहचानते हो कि नहीं है? हर बाप अपने बच्चे की आवाज तो पहचानेगा ना, 8-8 वर्ष तक पाला है वो, तो अपने बच्चे की आवाज नहीं पहचानेगा। पूछा चौकीदार ने, तुम अपने बच्चे की आवाज को पहचानते हो कि नहीं? बोले क्यों नहीं पहचानना, मैं पहचानता हूं। बोले पहचानो, वो वेद पढ़ रहा है, कान लगा के सुनो, तुम्हारा बच्चा भी पढ़ रहा है, सुनो। अब वो कान लगाता है कि मेरे बेटे का आवाज मैं पहचानूं, 1000 कोशिश कर रहा है, पहचान नहीं पा रहा है, जबकि उसका बच्चा अंदर गुरुकुल में पढ़ रहा है, आवाज उसके कान में पड़ रही है। बच्चों के पढ़ने, वेद पढ़ने की आवाज उसके कान में पड़ रही है, लेकिन यही मेरे बेटे का आवाज है, ये पहचान नहीं पा रहा है। चौकीदार ने पूछा, तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, आवाज पहचान रहे हो? बोले मेरे बेटे का आवाज नहीं पहचान रहा हूं, पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। क्या सुन रहे हो? बोले आवाज तो सुन रहा हूं, आवाज सुन रहा हूं, अपने बेटे की आवाज नहीं सुन रहा हूं। लो जी, दोनों बात कह रहा है कि नहीं, भान भी कह रहा है कि भाने अभी, आवाज सुन रहा हूं ये भी कह रहा है, साथ में क्या कह रहा है, मेरे बेटे की आवाज नहीं सुन रहा हूं ये भी कह रहा है। तो भाने अभी अभानम, भान होने पर भी भान नहीं होता, आनंद का भान हो रहा है, आप लोगों का आनंद का भान आज तक नहीं हुआ है? आनंद की अनुभूति आप लोगों को आज तक नहीं हुई है क्या? पैदाइश से आज तक क्यारे एक मजा नहीं आई? कुक कुक दाड़े तो आवे से ने? अब ये निश्चय नहीं, आनंद आ तो रहा है लेकिन ये निश्चय नहीं कि ये आनंद मेरा आनंद अपना आनंद है कि विषय का आनंद है, आप पृथक नहीं कर पा रहे हो। इसी तरह वो जो बाप है बाहर खड़ा है, बच्चों की आवाज सुन रहा है, बच्चों की आवाज में अपने बेटे की आवाज भी सुन रहा है, फिर भी यही मेरे बेटे का आवाज है निश्चय नहीं कर पा रहा है। ये दृष्टांत दिया। अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ, अध्ययन करने वाले बच्चों के समूह में उस व्यक्ति का बेटा भी अध्ययन कर रहा है। पुत्र अध्ययन शब्दवत, उसके बेटे का अध्ययन का जो शब्द है वो कान में तो पड़ रहा है, फिर भाने अपि कान में पड़ रहा है, भान होने पर भी अभानम, यही मेरे बेटे का आवाज है, वो निश्चय नहीं कर पा रहा है। क्यों महाराज? भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। ये समस्या कब आती है? तो कहीं कोई प्रतिबंधक आता है तो वो प्रतिबंधक के चलते इस प्रकार के भान में भी आवान हो जाता है। प्रतिबंधक के चलते भान होने पर भी आवान रह जाता है, तो सामान्य भान होने पर भी विशेष भान नहीं हो पाता। आप समझ गए कि नहीं? सामान्य भान क्या है? बच्चों की आवाज उसके कान में पड़ रहा है, वो सामान्य है। विशेष आवान क्या है? ये मेरे बच्चे का आवाज है, ये विशेष आवान हो रहा है। सामान्य भान होने पर भी विशेष आवान हो रहा है। अब दृष्टांत में और दृष्टांत में आनंद तो आप लोगों को आ रहा है, सोते हो तो आनंद आता है, आता है कि नहीं? खाते हो तो आनंद आता है, आता है कि नहीं? पीते हो तो आनंद आता है, नहीं तो क्यों पीते? पीने वाले नहीं तो क्यों पीते? बोलो, दारू पीने वाले उनको आनंद ना आता होता तो पीते? खाते हो तो आनंद आता है, पीते हो तो आनंद आता है, आनंद तो आ रहा है लेकिन ये आनंद सामान्य आनंद, विशेष रूप में ये आनंद मेरा ही है ये अनुभव निश्चय नहीं कर पा रहे हो। है? मुझे सोने की जरूरत नहीं क्योंकि आनंद रूप में हूं, इसलिए मुझे सोने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कर पा रहे हो। सोए बिना मुझे आनंद नहीं आएगा, यही आप भ्रांति में हो। बिना सोए भी मुझे आनंद आ रहा है, मुझे सोने की क्या जरूरत? बिना खाए भी मुझे आनंद आ रहा है, मुझे खाने की क्या जरूरत? ये नहीं कर पा रहे हो। क्यों महाराज? किसके चलते ऐसा हो रहा है? प्रतिबंध है ना। अब प्रतिबंध क्या है, उस बात को यहां 13वें श्लोक के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। प्रतिबंध का लक्षण बता रहे हैं। प्रतिबंधो अस्ति भातीति व्यवहारार्ह वस्तुनि। तमाम व्यवहार का योग्य जो वस्तु है वो वस्तु में अस्ति और भांति, ये दो चीज होना जरूरी है। व्यवहार हार वस्तुनि अस्ति और भांति, अस्ति माने सत्ता होना, भांति माने दिखना जानना। आप जानते हो लेकिन वस्तु नहीं दिख, वस्तु नहीं है तो व्यवहार नहीं कर पाओगे। वस्तु है लेकिन जानते नहीं हो तो व्यवहार नहीं कर पाओगे। समझे कि नहीं? वस्तु होना भी चाहिए और वस्तु को जाना भी जाना चाहिए। इसीलिए कहा व्यवहार अर्ह वस्तु, व्यवहार अर्ह व्यवहार के योग्य वस्तु में अस्तिता और भातिता ये दोनों होनी चाहिए, तभी जाकर आप व्यवहार कर पाओगे। तम निरस्य, प्रतिबंध क्या करता है? वस्तु के अस्तित्व को और वस्तु के भातिता को निरस्य हटा देता है। कौन? प्रतिबंधक। उस वस्तु के होनेपने को और उस वस्तु के ज्ञातपने को हटा देता है, रोक देता है। तब निरस्य, विरुद्धस्य तस्य उत्पादनम उच्यते। ये प्रतिबंध का लक्षण है। प्रतिबंध क्या करता है? उसके विरुद्ध को उत्पादन कर देता है। वहीं पर अस्ति की जगह वह नास्ति भाव पैदा कर देता है। कौन? प्रतिबंध। अस्ति में नास्तिता और भांति में अभानता ये पैदा कर देता है। ये प्रतिबंधक की विलक्षणता है। ये सामर्थ्यता है प्रतिबंध में। वेदांत में उसको प्रतिबंध कहते हैं। प्रतिबंध क्या करता है? तमाम व्यवहार के योग्य वस्तु में जो अस्तिता और भातिता होनी चाहिए उसके बिना व्यवहार नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रतिबंध आकर क्या करता है? अस्ति को हटा देता है, अस्ति की जगह विरुद्धम उत्पादते यानी नास्ति भाव पैदा कर देता है, और भांति को हटाकर न भांति न ज्ञातम अज्ञातम अज्ञात भाव को पैदा कर देता है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आएगी और आगे विश्लेषण से विचार करते जाओगे तब जाकर स्पष्ट होगा। प्रतिबंधक का ये फंक्शन है, ये कार्य है प्रतिबंधक का। अब प्रतिबंधक का स्वरूप क्या है? कार्य तो समझ में आ गया। व्यवहार के योग्य अस्ति और भांति पदार्थ में रहकर अस्तिता को हटाकर भातिता को हटाकर विरुद्ध भाव को पैदा करता है, यानी नास्तिता और न भातिता ये दो भाव को पैदा कर देता है प्रतिबंध। अब यहां दृष्टांत में प्रतिबंधक समझ लो क्या है। दृष्टांत दिया था ना बच्चे के सह अध्ययन, ये सह अध्ययन, इसलिए भान होने पर भी भान नहीं हो रहा था बाप को। तो सह अध्ययन यही समानाविहार यही प्रतिबंधक बनकर बैठा हुआ है। अध्ययन प्रतिबंधक नहीं है। प्रतिबंधक क्या है? सह अध्ययन यह प्रतिबंधक है। अब फिर वह दृष्टांत को समझ लो। चौकीदार ने उसके बाप को, बेटे के बाप को, पेरेंट्स को गेट में ही रोके रखा। सह अध्ययन का जब पीरियड खत्म हुआ तब गुरु ने फिर एक एक को अलग अलग अध्ययन कराना आरंभ किया। समानाभिहार को छोड़ दिया, सह अध्ययन को, सह उच्चारण, सामूहिक उच्चारण को रोककर अब अलग अलग उच्चारण के अभ्यास आरंभ कर दिया। तो गुरु ने एक बच्चे को कहा कि लबोल, तो उसने अकेले बोला। चौकीदार ने पूछा, ये तुम्हारे बेटे की आवाज है? उसने कहा कि नहीं, ये आवाज तो मेरे बेटे का नहीं है। गुरु ने फिर दूसरे बच्चों को कहा कि अच्छा तू बैठ जा। अच्छा दूसरे को, रामप्रसाद अब तुम अभ्यास करो। तो रामप्रसाद फिर बोलने लगा अकेले। चौकीदार ने पूछा, ये तुम्हारे बेटे का आवाज है? बोले, ये भी मेरे बेटे का आवाज नहीं है। पहचानते तो हो? बोले, हां हां। तीसरे नंबर में श्याम प्रसाद को कहा गुरु ने, श्याम प्रसाद अब तुम्हारी बारी, तुम अभ्यास करो। खड़ा हुआ, उसने जैसा ही गणानंद शुरू किया, बाप खुश हो गया। क्या हुआ भाई? बोले, ये मेरे बेटे का आवाज है, ये मेरा बेटा है। पहचान लिया ना? उसका बेटा पहले भी पढ़ रहा था, पहचान कान में शब्द पढ़ रहा था, निश्चय नहीं कर पा रहा था, यही मेरे बेटे का आवाज है। क्यों? समूह ये प्रतिबंधक बनकर बैठा था। सह अध्ययन, समूह आवाज, उसके आवाज के बीच में और जो उसके बेटे नहीं है उनके आवाज भी सन्निहित होने के कारण वो प्रतिबंधक बन गया था। इसलिए यही मेरे बेटे का आवाज है नहीं पहचान पा रहा था। अब वो प्रतिबंधक हट गया। कौन? सह अध्ययन रूपी प्रतिबंधक हट गया। तो अकेले अकेले जब पढ़ने लगे तो उसका बेटा जब अकेले पढ़ने लगा तो फट से उसने पहचान लिया, तो ये मेरा बेटा है। कैसे पहचाना? क्योंकि प्रतिबंधक हट गया तो पहचान लिया। दृष्टांत ये था। अब दृष्टांत में क्या है बताने जा रहे हैं। प्रतिबंधक क्या है दृष्टांत में? तस्य हेतु समानाभिहार पुत्रध्वनि श्रुतौ, पुत्रध्वनि श्रुतौ, बेटे के वेद अध्ययन के प्रसंग में प्रतिबंधक क्या था? समान अध्ययन, सह अध्ययन, सभी के आवाज मिलकर आने के कारण अपने बेटे के आवाज को अलग नहीं पहचान पा रहा था। अब सभी के आवाज हट गया, उसका उसके बेटे का अकेला आवाज आया तो बड़ से पहचान लिया। यहां क्या हो रहा है? विषयों के साथ मिलकर तुम्हारे आनंद का तुम्हें अनुभव होने के कारण ये मेरा ही आनंद है निश्चय नहीं कर पा रहे हो। अब विषय को हटेगा, इन सारे विषयों को हटाओगे तो हटाकर देख लो फिर, सारे विषय को हटाकर देख लो फिर तुम्हारे अपने आनंद का अनुभव तुमको स्पष्ट होगा। अब उदाहरण देंगे, सुषुप्ति में होता है कि नहीं देख लो ना भाई, और की बात छोड़ दो, सुषुप्ति में होता क्या है? है? सुषुप्ति में रसगुल्ला, मेथी का पकौड़ा का गोटा कुछ नहीं रहता, विषय रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में कोई विषय सन्निहित न होने के कारण वहां तुम्हें आनंद जो आता है, तुम जब कहते हो कि मुझे बड़ा आनंद आया, क्या खाकर आनंद आया, क्या देखकर आनंद आया, क्या छूकर आनंद आया, किस विषय से आनंद आया, तुमसे पूछा जाए तो किसी एक विषय का नाम ले पाओगे? ये क्या है? तुम्हारा अपना स्वरूप परमानंद स्पष्ट अनुभव हो रहा है वहां। अब जागृत के बाद बड़ा आनंद आया। कैसे आनंद आया? आम रस खाया इसलिए आनंद आया। बड़ा आनंद आया कैसे आया? श्रीखंड पूरी खाई इसलिए आनंद आया। बड़ा आनंद आया कैसे आया? प्रवचन सुना इसलिए आनंद आया। ले जी, तो प्रवचन से आनंद आया नहीं? प्रवचन से आनंद आता होता तो सुसुप्ति में भी प्रवचन के बिना आनंद नहीं आता। ये प्रसंग है। तस्य हेतु समाना भी हारह पुत्र ध्वनि श्रुतौ इह। अब दृष्टांत में प्रतिबंधक क्या है? दृष्टांत में प्रतिबंधक सह अध्ययन। दृष्टांत में प्रतिबंधक क्या है? नहीं, ये तुम्हें गलती। यह अनादि अविद्या, ये अनादि अविद्या एव व्यामोहिक निबंधनम। अनादिकालीन जो अविद्या है, मूल अविद्या, वही अविद्या यहां प्रतिबंधक बनकर बैठा हुआ है। इसीलिए अपने आनंद का सामान्य भान होने पर भी विशेष भान होने नहीं दे रहा है। वो अविद्या हट जावे तो अपने आनंद का विशेष अनुभव हो जाएगा। अब वो अनादि अविद्या क्या है, अब उसका लक्षण परिष्कार करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।